So, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो अध्यात्मवादी है और दूसरे जो भौतिक है, भोग में लिप्त है। अध्यात्मवादी में भी दो तरह के लोग हैं, साकार और निराकार। जो मानते हैं कि भगवान का साकार रूप है और कुछ लोग मानते हैं भगवान का भगवान निर्गुण है, निराकार है। लेकिन कृष्णा भगवद्गीता में कई स्थान पर संकेत दे रहे, स्पष्ट बता रहे हैं कि भगवान का जो साकार रूप है वो श्रेष्ठ है। कई लोग ऐसे भी हैं जो शुरू में भगवान के साकार रूप की उपासना करते हैं और वो बोलते हैं कि जब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो मूर्ति को तोड़ के फेंक देंगे, जो बच्चों उपासना करते हैं, जैसे सूर्य, गणेश और विष्णु, सूर्य की उपासना करते हैं, बच्चों उपासना, वो सोचते हैं कि अभी हम लोग साधना अवस्था में एक बार ही हम सिद्धावस्था में आ गए, फिर हमें ये मूर्ति की जरूरत नहीं है, मूर्ति की जरूरत जो है वृद्धावस्था में है। सो उसको तोड़ के फेंक देंगे, काम खत्म, फिर निराकार में नहीं हो जाएंगे। लेकिन कृष्णा बता रहे हैं भगवद्गीता में कि उनका जो साकार रूप है वो निराकार रूप की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ब्रह्मणों की प्रतिष्ठा हम, कृष्णा भगवद्गीता में कह रहे हैं कि उनका जो निराकार रूप है, जो ब्रह्म ज्योति है, वो भगवान कृष्ण के जो चरण कमलों की जो नख नाखून है उसकी ज्योति है, वो है ना, और उस पर आश्रित है। भगवान कृष्ण के अतिरिक्त उनको हटा दिया जाए तो ब्रह्म ज्योति का कुछ अस्तित्व नहीं है, जैसे सूर्य के बिना सूर्य की किरणों का अस्तित्व नहीं है। सो और कृष्ण कह रहे हैं, देखो आपकी मर्जी है, आप साकार रूप की उपासना करो या निराकार रूप की, आपकी मर्जी है, लेकिन जान लो कि आसक्त अव्यक्त चेतना, जिनकी ही चेतना अव्यक्त, जिनकी चेतना निराकार रूप में जिनकी रुचि है, उनको बहुत सारे क्लेशों का सामना करना पड़ेगा। मान लिया वो आध्यात्मिक, हम बोल सकते हैं कि ये लोग आध्यात्मिक हैं, लेकिन इनको फिर भी अनेक क्लेशों का सामना करना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण अनेक लीलाओं के द्वारा ये हमें दर्शाते हैं, हमें बताते हैं कि उनका जो साकार रूप है वो श्रेष्ठ है। तो आजकल क्योंकि गर्मियां शुरू हो गई तो इस्कॉन में जो है चंदन यात्रा महोत्सव मनाया जाता है, अक्षय तृतीया से शुरू होकर 21 दिन के लिए, है ना। आप अभी भी आप इस्कॉन के मंदिरों में जाएंगे तो आप देखेंगे जहाँ पर भगवान के श्याम वर्ण की जो विग्रह है वो अभी श्याम वर्ण के नहीं रहे, अभी वो गौर वर्ण के हो गए। जैसे आप पजाईबाग मंदिर जाएंगे तो वहां पर तो चलो राधिका रमन जो है वो तो पहले से गौर वर्ण के हैं, लेकिन कृष्ण बलराम में भगवान कृष्ण श्याम वर्ण के हैं। तो आप जाके देखेंगे तो आपको वो श्याम वर्ण दिखेंगे नहीं, आपको गौर वर्ण के दिखेंगे, क्योंकि भगवान के पूरे शरीर पर चंदन का लेप किया जाता है, भगवान के शरीर को ठंड पहुंचाने के लिए, गर्मी से छुटकारा दिलाने के लिए। तो आप बोलोगे ये मतलब ये तो भावुकता है, इमोशंस है ना, मतलब किसी के मन में आया कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण ने निर्देश दिया था ऐसा करने का, और इस लीला के द्वारा भगवान ने अनेक का कार्य सिद्ध किए, भगवान ने अपने शुद्ध भक्त माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी जो है बहुत ही महान माधुर्य भाव में भगवान की भक्ति कर रहे थे। माधवेंद्रपुरी जो है उनके शिष्य श्रीला ईश्वरपुरी और श्रीला ईश्वरपुरी के शिष्य है चैतन्य महापुरी, तो इसी से आप जान सकते हो कि श्रीला माधवेंद्रपुरी कितने उन्नत और कितने महान भक्त हैं, कि उनके शिष्य से शिष्य को चैतन्य महापुरी ने अपना गुरु स्वीकार किया। तो एक बार माधवेंद्रपुरी जो है वो गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे थे वृंदावन में, और परिक्रमा लगा के थोड़ा थक गए हो तो गोविंद कुंड एक स्थान है, आप अगर गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे तो अनेक कुंड आते हैं बीच में, है तो जैसे राधा कुंड श्याम कुंड आते हैं नहीं, सो इसी तरह से एक कुंड है गोविंद कुंड, सो वहां पर बैठे हुए थे और भूखे प्यासे थे क्योंकि परिक्रमा के दौरान जो है कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, है ना, आप अगर कुछ खाना पीना चाहते हो तो परिक्रमा से पहले ग्रहण कर लो, नहीं तो परिक्रमा करने तक वेट करना चाहिए, पूरी परिक्रमा करो उसके बाद में कुछ प्रसाद या जल ग्रहण करना चाहिए जहां तक संभव हो, है ना। सो माधवेंद्रपुरी बैठे थे, उन्होंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, तो एकदम एक बहुत ही सुंदर बालक आया, उसने बोला कि आप ऐसे क्यों यहाँ पर बैठे हो भूखे प्यासे, ये माधवेंद्रपुरी में आपके लिए दूध लेके आया, आप ये दूध पी लो और मैं थोड़ी देर में आके ये घड़ा ले जाऊंगा। तो माधवेंद्रपुरी उनको देखते ही सारी थकान उनकी दूर हो गई, और चैतन्य चैतन्य में लिखा कि बहुत ही संतोष का अनुभव किया उन्होंने उस बालक को देख के। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें कैसे पता कि मैं भूखा हूं, तो उन्होंने बोला देखो मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता, वो कुछ स्त्रियां जा रही थी यहां से, उन्होंने देखा तुम बैठे हुए, तो उन्होंने मुझे दूध दे के भेजा कि जाओ उसको दूध दे दो, तो तुम दूध पियो, मैं जरा गायों को गायों का दोहन करके आता हूँ, मैं वापसी में घड़ा ले जाऊंगा। तो माधवेंद्रपुरी ने दूध पी लिया, उसको धो के सुखा के रखा, वो वेट करते रहे, काफी वेट की आए नहीं, वो बालक आया नहीं, तो माधवेंद्रपुरी की आंख लग गई, तो स्वप्न में वो बालक आया और बालक ने माधवेंद्रपुरी का हाथ पकड़ लिया, तो उन्हें बोला आओ मैं तुम्हें एक जगह पर लेके चलता हूँ। तो माधवेंद्रपुरी ने कहा स्वयं कृष्ण आए थे मैं पहचान नहीं पाया, सो भगवान कृष्ण स्वप्न में उनका हाथ पकड़ के लेके गए और एक जंगल था वहां पे लेके, काफी झाड़ियां झाड़ झंखार होते हुए थे, तो बालक ने बोला कि देखो मुझे यहाँ पर मुसलमानों के डर से पुजारी ने दबा दिया था, बहुत टाइम हो गया मुझे, बहुत गर्मी लग रही है, बारिश होती है तो बारिश तंग करती है, सर्दी होती है तो सर्दी तंग करती है, अभी बहुत गर्मी है तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे यहाँ से निकालो और मेरी सेवा शुरू करो। तो माधवेंद्रपुरी की नींद खुल गई, तो अगले दिन सुबह सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और उस स्थान पर लेके गए जहाँ पर भगवान के विग्रह छुपे हुए थे, और उन्होंने बताया था गोपाल उस बालक ने कि ये जो विग्रह है वो वज्र ने बनाए हैं, आप बोलोगे वज्र कौन है, तो वज्र जो है वो भगवान कृष्ण के पोते थे, और वज्र नाम उनका नाम था, और उन्होंने भगवान कृष्ण के अनेक विग्रह उन्होंने बनाए, जैसे जो मदन मोहन जी के विग्रह हैं, गोविंद देव जी के विग्रह हैं, गोपीनाथ जी के विग्रह हैं, ये सब वज्रनाथ जी ने बनवाए, और उन्होंने अलग अलग स्थानों पर उनको स्थापित किया भगवान की विभिन्न लीलाओं को दिखाने के लिए। सो माधवेंद्रपुरी ने सारी जगह साफ करवाई और वहां से विग्रह निकल आए, गोपाल है ना, तो गोपाल जी के बिगड़े थे तो लेके आए, सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, उनको लेके गए वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर, और उन्होंने गोवर्धन पर्वत पर उनको स्थापित किया और गोविंद कुंड से 900 घड़े पानी भर के लेके आए और उनको बहुत अच्छे से स्नान करवाया, उनको तेल से मालिश की उनके जो शरीर की भगवान के, और फिर 900 घड़ों से उनका अभिषेक किया भगवान का, और अनेक प्रकार के चंदन और सुगंधित तेल, सुगंधित जल उनके शरीर पर मसाज की, मालिश की। और भगवान ने कहा बहुत भूख लगी है मुझे, नहाने का भूख लग जाती है ना एक तरह से, तो सारे गांव वाले जो उस गांव के निवासी थे सब अपने घर से जितना भी सामान था सब लेके आ गए और सबने पूरा वहां पे अन्नकूट महोत्सव मनाया। तो केवल माधवेंद्र पुरी देख पा रहे थे कि जो गोविंद जो गोपाल बिक रहे हैं वो सारा भोजन चट कर रहे, दूसरे लोग देख रहे थे कि भोजन यथारूप पड़ा हुआ है, लेकिन माधवेंद्र पुरी देख पा रहे थे कि जो गोपाल बिक रहे हैं भगवान गोपाल जो है उनको बहुत भूख लगी है, सारा भोजन जो है जो भोग लगाया था सारा खा रहे थे। जैसे गोवर्धन पूजा में भगवान कृष्ण ने दिखाया था ना, सारा भोजन ग्रहण कर लिया और फिर उसको दोबारा से प्रकट कर दिया। तो चैतन्य चैतन्य केवल भगवान का शुद्ध भक्ति भगवान की ऐसी लीलाओं को देख सकता है और कोई नहीं देख सकता है ना। जैसे महाराज प्रताप पुत्र और सारनाथ भट्टाचार्य वो देख रहे थे जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही थी तो 7 टोलियां थी है, तो हर टोली वाला सोच रहा था कि चैतन्य महाप्रभु उनकी टोली में नाच रहे हैं, लेकिन महाराज प्रताप और सारनाथ भट्टाचार्य देख पा रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु एक ही समय में 7 टोलियों में विद्यमान थे और नृत्य कर रहे थे। तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं भगवान को ऐसी दृष्टि प्रदान करते हैं कि वो भगवान की अंतरंग गूढ़ लीलाओं को देख सकता है ना। तो एक दिन अन्नकूट महोत्सव हो गया, अगले दिन दूसरे गांव वाले आ गए, उन्होंने बोला हम भी करेंगे अन्नकूट महोत्सव, तो अगले दिन दूसरे गांव वालों ने किया, उसके बाद तीसरे गांव वालों ने किया, तो ऐसे ही आसपास के सारे गांव एक एक करके आए और माधवेंद्र पुरी ने बोला ठीक है आज तुम कर लो, कल तुम करना, परसों तुम करना, ऐसे सबका टाइम बांध दिया और धीरे धीरे ये खबर फैल गई। तो जो मथुरा मंडल है उसके बाहर से भी लोग आना शुरू हो गए और मथुरा में बहुत सारे अमीर लोग रहते थे, तो चैतन्य चैतन्य लिखा कि कोई व्यक्ति ने भगवान का मंदिर बनवा दिया, किसी ने 4 दीवारें बनवा दी, कोई भगवान के लिए बहुत सुंदर आभूषण लेके आ गया और सारे गांव वालों ने मिलके एक एक गाय भगवान को दान कर दी, तो भगवान के पास हजारों गाय हो गई, जो भगवान की संपत्ति थी भगवान की सेवा के लिए वो गायों का प्रयोग होने लग गया। तो ऐसे ही 2 वर्ष तक ये बात चलती रही इसी तरह से रोज 2 साल तक। आप सोचो हम लोग एक अन्नकूट महोत्सव करते हैं तो थक टूट जाते हैं, अशिला माधवेंद्र पुरी जो है 2 वर्ष तक रोज अन्नकूट महोत्सव करते हैं। और तो प्रश्न उठता है कि माधवेंद्र पुरी खाते कितना थे, तो चैतन्य चैतन्य में लिखा है कि जो 2 वर्षों का टाइम था इस दौरान पूरा दिन माधवेंद्र पुरी भूखे रहते थे, व्रत करते थे पूरा दिन और शाम के समय थोड़ा सा दूध लेते थे बस, है ना। ऐसा नहीं कि वो बोलते थे अच्छा अन्नकूट में कौन से स्वादिष्ट चीजें हैं जरा मेरे लिए अलग से प्लेट लगा दो, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे इस्कॉन में बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं और बहुत फीस्ट भी बनाई जाती है, लेकिन प्रभुपाद कहते थे कि ये जो फीस्ट है ये आपके लिए नहीं है, ये जो आपके जो अतिथि हैं जो मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं, पहली बार आए हैं, नए लोग हैं, ये उनके लिए है। आप रुखा सुखा खाओ, आप कुछ बच जाए तो खा लेना, आपका काम है उनकी सेवा में सारे हमेशा लगे रहना, हमेशा तत्पर रहना है। तो युक्त वैराग्य, बहुत सारे लोग बात करते हैं युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य का मतलब है चीजों को भगवान की सेवा में लगाओ और दूसरों को तो खुद मत ले लो, है ना। युक्त वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप रोज भगवान के लिए फीस्ट बनाओ और खुद खा जाओ। युक्त वैराग्य का मतलब है आप फीस्ट बनाओ और हजारों लोगों को इकट्ठा करो और उनमें बांट दो, और खुद अगर कुछ बच जाए तो खा लो, नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं, है ना। ये है युक्त वैराग्य वास्तव में। तो दो वर्ष का समय बीत गया ऐसे ही करते करते, तो माधवेंद्र मुरली एक बार विश्राम कर रहे थे रात को, तो दोबारा से गोपाल विग्रह के स्वप्न में आया। उन्होंने बोला कि देखो तुमने सेवा तो काफी की है लेकिन अभी भी ना मुझे बहुत गर्मी लगती है, तो तुम्हें पता है कि मलय जो चंदन है उड़ीसा में होता है, वो जो चंदन है वो बहुत ठंडक देने वाला होता है, तो तुम खुद जाओ और जाके वहां से चंदन लेके आओ और वो चंदन का पेस्ट बना के मुझे आप लेप करो उसका, तो मुझे ठंडक मिल जाएगी। तो माधवेंद्र पुरी ने बोला ठीक है। अगले दिन माधवेंद्र पुरी, हालांकि उनकी उम्र भी हो चुकी थी, उन्होंने ये भी सोचा कि कैसे होगा, कैसे लेके आऊंगा, भगवान ने आदेश दिया है पूरा करना है, बात खत्म हो गई, है ना। तो माधवेंद्र पुरी निकल पड़े अगले दिन और वो जगन्नाथ पुरी के लिए निकले। तो जगन्नाथ पुरी के रास्ते में बालेश्वर जगह आती है, और बालेश्वर से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है रेमुना। तभी सारे भक्त रेमुना गए थे अपने, और चैतन्य महाप्रभु गए थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था और चैतन्य महाप्रभु पुरी की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में वो रेमुना में रुके थे चैतन्य महाप्रभु, और जब चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ जी के विग्रह को प्रणाम किया, तो गोपीनाथ जी के जो विग्रह हैं उनसे उनके गले से माला निकल के चैतन्य महाप्रभु के शरीर पर गिर गई, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। और आप सब भक्त जो वहां पर आप बैठे थे जिस प्रांगण में, चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर बहुत नृत्य किया है वहां पर, है ना। तो माधवेंद्र पुरी चलते जाए तो रेमुना आए, और रेमुना में वो रेस्ट कर रहे थे। तो रेमुना में जो गोपीनाथ जी हैं, गोपीनाथ जी को एक बहुत ही विशिष्ट भोग अर्पित किया जाता है, उसको बोलते हैं अमृत के लिए, क्षीर बोलते हैं, क्षीर है अमृत के लिए उसका नाम है। अमृत के लिए नाम क्यों है, क्योंकि वो अमृत के समान स्वादिष्ट है ना। आप सब बचपन में खाई थी अभी नहीं, आपको मिले थे। माधवेंद्र पुरी ने भी सुना था उसके बारे में कि यहाँ पर गोपीनाथ जी को बहुत ही स्वादिष्ट खीर का भोग लगाया जाता है। तो उस समय भोग लगाने का समय हुआ, तो 12 कुल्हड़ जो है 12 पात्र में उनको भोग लगाया जाता है, है ना। जब भोग लगाया जा रहा था तो माधवेंद्र पुरी ने सोचा कि अगर मुझे ये मिल जाए चखने के लिए, तो वो मैं वापस जाऊंगा वृंदावन, तो ऐसी जो भोजन है मैं ऐसे ही भगवान गोपाल विग्रह के लिए बनाऊंगा और उनको अर्पित करूंगा। लेकिन फिर भी शिष्टाचार के खिलाफ है कि जब भगवान को भोग लगाया जाए उस समय आप उस भोजन को खाने के बारे में नहीं सोच सकते। तो जैसे ही माधवेंद्र पुरी के मन में विचार आया, वैसे उनको भोग लगानी हो गई। उन्होंने बोला ये मेरे मन में कैसा विचार आया, ऐसा विचार आना नहीं चाहिए था, बहुत पश्चाताप हुआ। उठ के चले गए, बाहर जाके वृक्ष के नीचे बैठ गए, जप करने लगे, और पुजारी आया, उसने भोग अर्पण करने के बाद वो सारे कुल्हड़ उठा लिए वहां से और विश्राम करने लग गया। और स्वप्न में, उसके स्वप्न में पुजारी के सपने में गोपीनाथ जी आए, उन्होंने बोला तुमने 12 कुल्हड़ नहीं उठाए, तुमने 11 कुल्हड़ उठाए, क्योंकि 12वां पात्र जो है वो मैंने पर्दे के पीछे छुपा लिया, तो तुम आओ और वो जो पात्र है वो तुम लेके जाओ, और बाहर मेरे बहुत ही प्रिय भक्त बैठे हैं माधवेंद्रपुरी, जाके उनको दे दो। तो पुजारी एकदम बहुत हैरान हो गया, फटाफट उठा, नहाया और जाके देखा तो पर्दे के पीछे एक पात्र रखा हुआ था। तो वो दिन से गोपीनाथ जी का नाम क्या पड़ गया, क्षीरचोर गोपीनाथ, है ना। आप वहां जाओगे ना रेमना में, तो आप वहां जाके सिर्फ यही पूछना वो क्षीरचोर गोपीनाथ का मंदिर का है, सब बता देंगे, है ना। वहां पे क्षीरचोर गोपीनाथ के नाम से मशहूर है। तो वो पुजारी ने लिया वो पात्र और बाहर जाकर पूछा कौन है माधवेंद्रपुरी कौन है। तो माधवेंद्रपुरी ने बोला क्या हो गया भैया, क्या क्या गलती हो गई, मेरा नाम माधवेंद्रपुरी है। तो उन्होंने बोला ये गोपीनाथ जी ने आपके लिए चोरी की है और ये अमृत के लिए क्षीर की, तो ये आपके लिए उन्होंने बोला आपको देखिए। तो माधवेंद्रपुरी बहुत प्रसन्न हो गए कि गोपीनाथ जी ने उनको चखने के लिए वो खीर दी और गोपीनाथ ने वो खाया। तो अगले दिन सारी जगह बात फैल गई, है ना, कि गोपीनाथ जी ने ऐसे खीर चोरी की अपने भक्त के लिए, तो सब लोग उनके दर्शन के लिए आने लग गए। तो वो लोग जो माधवेंद्रपुरी है, माधवेंद्रपुरी जो है बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे और बोल रहे थे ऐसे सब लोग बिना वजह मुझे सम्मान दे रहे हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है सम्मान की। तो फौरन वहां से चले गए पुरी के लिए और जब पुरी गए तो वहां से उन्होंने जो कपूर और चंदन लिया और लेके वापस रेमना आके रुके। तो जब रेमना में रुके रेस्ट कर रहे थे तो दोबारा उनके सपने में कौन आया, गोपाल जी। तो गोपाल जी ने बोला देखो मुझमें और गोपीनाथ जी में कुछ भेद नहीं है, तो तुम ये जो चंदन लाए हो इसको तुम चंदन को गोपीनाथ जी के विग्रह पे ही लेपन कर दो इसका, है ना, तो मुझे वृंदावन में ठंडक मिल जाएगी। तो माधवेंद्रपुरी ने वहीं पर चंदन घिसा और गोपीनाथ जी के विग्रह पे लगाया वो चंदन, और उस दिन से जो है इस्कॉन के सारे केंद्रों में जो ये महोत्सव मनाया जाता है श्रीला माधवेंद्रपुरी की भक्ति, उनकी सेवा का यशोमान करने के लिए और ये बताने के लिए कि भगवान एक व्यक्ति है और भगवान चाहते हैं कि हम उनसे भक्ति में आदान प्रदान करें, हम एक व्यक्ति की तरह उन्हें उनसे हम व्यवहार करें, उनको एक पत्थर की मूर्ति नहीं समझे। तो आप सोचोगे कि जो गोपाल जी के विग्रह है वो कहाँ है, वो विग्रह है ना, तो आपको से कुछ को पता है किसी को गोपाल जी के विग्रह कहाँ है। सो गोपाल जी के विग्रह श्रीनाथ जी है ना, तो गोपाल जी के विग्रह फिर ट्रांसफर हो गए आपके उदयपुर के पास में नाथ द्वारा में, अभी गोपाल जी का नाम क्या है, श्रीनाथ जी, और उनको वल्लभाचार्य के जो वंशज हैं वो उनकी सेवा कर रहे हैं। माधवेंद्रपुरी ने उनकी सेवा दी थी विट्ठल जी को जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे, तो बस वहां से वो उनके संप्रदाय में चले गए और वो लोग पुष्टि मार्ग में उनकी सेवा कर रहे हैं, है ना। सो जो इस लीला से हम ये समझ सकते हैं कि भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यते ताम स्वयं भजामि, है ना, अगर आप जैसा मुझसे व्यवहार करोगे मैं वैसा ही आपसे व्यवहार करूंगा, अगर आप मुझे एक व्यक्ति समझोगे तो मैं आपको एक व्यक्ति की तरह उत्तर दूंगा, जैसे साक्षी गोपाल है नहीं, तो पूरे वृंदावन के लोग उनको एक मूर्ति समझ रहे आके कि आप चलो मेरी दुआएं देने के लिए, तो भगवान के साथ वृंदावन से जो है उड़ीसा और दक्षिण भारत चले गए, दक्षिण भारत वहां चले गए। फिर दक्षिण भारत से महाराज प्रताप रुद्र उनको उड़ीसा लेके आए और अभी जगन्नाथपुरी से 20 किलोमीटर की दूर, 20 किलोमीटर ही होगा, तो 20 किलोमीटर की दूरी पर एक स्टेशन है साक्षी गोपाल, तो वहां पर साक्षी गोपाल जी के मंदिर हैं, आप लोग जाके देखो बहुत ही अद्भुत मिलते हैं, है ना। सो भगवान जो भी भगवान के विग्रह को साकार एक व्यक्ति के रूप में समझता है कि स्वयं भगवान विराजमान है, भगवान उनसे वैसा ही उसी भाव में आदान प्रदान करेंगे, और जो व्यक्ति भगवान को पत्थर की या धातु की प्रतिमा समझता है, भगवान उसके लिए हमेशा प्रतिमा ही बने रहेंगे, है ना। सो हम आप सब लोगों को पहली बात तो ये है कि आप सबको इस गांव के मंदिरों में जाना चाहिए, ये अभी भी चंदन यात्रा चल रही है, आप लोग जाओ और चंदन से लिपे हुए चंदन के लेप वाले भगवान के दर्शन करो, बहुत ही अद्भुत दर्शन होते हैं, कई लोग तो पहचान ही नहीं पाते ये वही विग्रह हैं क्या, बिल्कुल भगवान का रूप कई बार बिल्कुल चेंज हो जाता है ना। और दूसरी बात ये है कि वहां पर आप देखोगे तो मंदिर के एक कोने में जो सिल के पत्थर रखे होंगे, है ना, और साथ में वहां पर गुलाब जल और चंदन भी रखा होगा, तो आप लोग वहां पे जाके चंदन घिस सकते हो और वहां पर एक पात्र रखे होते हैं और जो घिसा हुआ चंदन है आप उस पात्र में डाल सकते हो, जो कि भगवान के शरीर का लेप करने में काम में आएगा, तो आपके भगवान के विग्रह की साक्षात सेवा कर सकते हो, चाहे आप ब्राह्मण दीक्षा आपको मिली हुई है या नहीं मिली हुई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई भी जाके चंदन घिस सकता है भगवान के लिए और उसकी वो सेवा सीधे भगवान के विग्रह की सेवा में जाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे सामने कुछ पत्थर की प्रतिमा नहीं है, हमारे सामने स्वयं भगवान विराजमान है, है ना, इसलिए हमें बहुत ही श्रद्धा से और बहुत ही सावधानी से भगवान के सामने व्यवहार करना चाहिए, इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के सामने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे बताया गया कि भगवान के सामने किसी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए किसी को, नहीं, ऐसे सपोज कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठा हो उसके सामने आप जाकर लड़ना शुरू हो जाओ तो अच्छी बात तो ना लगेगी, नहीं, और भगवान के सामने अपने पैर कभी नहीं फैलाने चाहिए, है ना, हमेशा पैर ढक के रखने चाहिए, यहाँ तक संभव भगवान के सामने उबासी नहीं लेनी चाहिए, भगवान के विग्रह के सामने जो है प्रजल्पा नहीं करना चाहिए, ऐसे अनेक भगवान के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, आमतौर पे क्या होता है कि जैसे आप मंदिर में खड़े हो और कोई भक्त आ गया तो आप देख के उसको इतना खुश हो जाते हो फौरन उसको दंडवत करते हो, तो अच्छी बात है दंडवत करना, लेकिन भगवान के विग्रह के सामने नहीं करना चाहिए, अगर आप दंडवत करना चाहते हो तो शिष्टाचार है कि आप मंदिर के बाहर जाओ और फिर उनको आप दंडवत कर सकते हो, भगवान के विग्रह के सामने आप हाथ जोड़ के प्रणाम करो तो वो पर्याप्त है ना, ठीक है ना, बल्कि भगवान के विग्रह के सामने गुरु को भी प्रणाम नहीं करते, है ना, सिर्फ एक प्रणाम एक व्यक्ति को प्रणाम कर सकते हैं, किसको, जो व्यास आसन पर बैठा हो, अगर व्यास आसन पे चाहे गुरु का कोई नीच भक्त भी बैठा है शिष्य भी बैठा है उसको भी प्रणाम करना चाहिए, गुरु बैठे तो प्रणाम करना ही है, लेकिन उसके अतिरिक्त भगवान के विग्रह के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, भगवान के विग्रह के सामने सिर्फ एक ही व्यक्ति को प्रणाम करना है, वह है स्वयं भगवान, ठीक है, उनके सामने किसी और को हम प्रणाम नहीं करते, हम आदर देते हैं दूसरों को, ठीक है, तो आप इन चीजों का, और जब आप मंदिर में घुसते हो तो आप सोचो कि वो मंदिर के दरवाजे पे घंटी क्यों लगी हुई है, नहीं? आप सबके घर में घंटी लगी हुई है, तो कोई भी आता है घंटी बजा के आता है ना, ऐसे आप लोग भगवान के घर में आ रहे हो तो आप घंटी बजा के आओ, आप अनाउंस करो भगवान को कि मैं आपकी सेवा में उपस्थित होना चाहता हूँ। भगवान बोले चलो आ जाओ, फाइन, कोई बात नहीं, है ना। इसलिए हमेशा हम कभी भी मंदिर में प्रवेश करें तो हमें घंटी बजानी चाहिए, और अगर घंटी नहीं हो तो हम दरवाजे को नॉक कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ढम 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 की आवाज आएगी तो ही बात बनेगी, आपने ऐसे नॉक कर दिया, आवाज थोड़ी सी आई चलेगा, भगवान सुन लेते हैं, है ना। सर्वतो पाणी पालन कर, भगवान के कान आंख नाक सब जगह है, भगवान छोटी से भगवान चींटी की आवाज भी सुन लेते हैं, तो आपका अगर आप नॉक करेंगे तो उसको भगवान सुन ही लेंगे, ठीक है। तो जब भी हम मंदिर में आए तो हमेशा पहले हमें घंटी बजानी चाहिए या दरवाजे पे नॉक करना चाहिए, और दरवाजे पे हमें प्रणाम करना चाहिए भगवान के विग्रह को और जितने भी वैष्णव उपस्थित हैं, है ना। अब जब हम दरवाजे में घुसते ही हम प्रणाम करते हैं तो हम बोलते हैं बादशाह कविश्च कृपा सिंधु वैष्णव, भगवान बहुत खुश होते हैं, चलो कितना विनम्र व्यक्ति है, विनम्र सेवक है मेरा, मंदिर में घुसते ही प्रणाम कर रहे हैं सबको, और फिर आके भगवान के विग्रह को आप प्रणाम करो, ये शिष्टाचार है, है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते मुझे पता नहीं है, ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है। एक इस कौन में किताब मिलती है, कृष्ण भागवत में पहला कदम, आप वो किताब लीजिए और उस किताब को आप पढ़ सकते हैं, उसमें सारी चीजें ये विस्तार से लिखी गई है कि तिलक कैसे लगाना है, तुलसी की आरती कैसे करनी है, भगवान को भोग कैसे लगाना है, कौन से मंत्र बोलने हैं। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि पता ही नहीं कैसे करना है काम, है ना। तो नहीं पता प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पता नहीं लगा रहे तो प्रॉब्लम है, है ना। तो अगर आपको नहीं पता कुछ दिक्कत नहीं है, आप जाओ और वहां से किताब खरीदो, कृष्ण भावनामृत में पहला कदम, उसमें सब कुछ बहुत डिटेल में और बहुत ही सरल भाषा में दिया गया, आप वो पढ़ लो और उसको अपने घर में आप अपने व्यवहारिक जीवन में उतार लो, ठीक है। हम जितना ये विधि विधानों का पालन करेंगे, ये सारे विधि विधानों का लक्ष्य हमें धीरे धीरे ये अनुभव कराना है कि भगवान एक व्यक्ति है और भगवान हमारे भावों को हमारी सेवा को ग्रहण करते हैं, और अगर हम अच्छे से सेवा नहीं करें तो भगवान को अच्छा नहीं लगता, तो हमें वो कार्य करना चाहिए और इस तरह से करना चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो, भगवान दुखी नहीं हो, है ना। तो आप प्लीज अगर आपको नहीं पता तो आप वो किताब खरीदिए, पढ़िए और जानकारी दीजिए, और आपके कुछ प्रश्न हो उस बारे में तो आपके बहुत सारे वरिष्ठ भक्त हैं, जैसे चतुर्भुज हरि प्रभु है ना, पावज राजा प्रभु है, वामन का प्रभु है, आप लोग इनसे पूछ सकते हो, ये आपको पूरी तरह से बताने में सक्षम है। इसी तरह से और रामचंद्र भी प्रभु है ना। सो अगर हम इस तरह चीजों को सीखने का और अपने जीवन को उतारने का प्रयास करेंगे तो हम भगवान को याद रख पाएंगे, है ना। जैसे हम सोचेंगे कि मंदिर में घुसते समय हमें घंटी बजानी है, प्रणाम करना है, तो ये सोचने से हमें भगवान का स्मरण होगा और हमारे जितने भी नियम और कानून है, जितने भी विधि विधान है, उसका सिर्फ दो ही लक्ष्य है उसके। एक लक्ष्य क्या है, भगवान को हमेशा याद रखना, और दूसरा लक्ष्य क्या है, भगवान को कभी नहीं भूलना। आप बोलोगे ये तो दोनों एक ही बात है, है ना। तो जो विधि विधान होते हैं उसमें एक होता है कि क्या करना है और दूसरा होता है क्या निषेध है, तो हमें वो काम करने चाहिए जिससे भगवान का स्मरण हो, और वो काम नहीं करने चाहिए जिससे हम भगवान को भूलें। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी सर्वे विधि निषेधासुर एतयोरेव किंकर जितने भी विधि विधान है जितने भी निषेध है वो इसी दो सिद्धांतों के किंकर हैं के सेवक हैं कि भगवान को हमेशा याद रखो और भगवान को कभी भी भूलो नहीं है ना। तो ऐसा मत सोचो कि विधि विधान मतलब हम तो आजाद रहने के लिए भक्ति में जुड़े थे ये और ज्यादा बंधन डाल दिए है ना। ये बंधन हमें मुक्ति की ओर ले जाने के लिए है। ये विधि विधान जो है हमें मुक्त अवस्था की ओर ले जाने के लिए है ना। और अगर हम इन विधि विधानों का पालन करेंगे तो हमें भगवान का स्मरण करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, हरे कृष्णा।